तुम यहां बहुत दूर आए हैं हमारे घर से, ताकि घर की कोई याद नहीं आए, हमारे संसार की बातें मन में नहीं आए, केवल भगवान के ऊपर हमारा ध्यान रहे। कभी कभी बीच बीच में ऐसे समय निकालना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि हम हमारे संसार में, हमारे निहित कार्यों में इतने उलझ जाते हैं कि भगवान के लिए हमें समय ही नहीं मिलता। और ऐसे समस्याओं में उलझकर फिर भक्ति में हमारा रस कम हो जाता है, भक्ति सूखा सूखा लगने लगता है। इसलिए बीच बीच में ऐसे यात्राओं में आना बहुत आवश्यक है। तो आज के दिन ये भूल जाइए कि आपके बच्चे कौन हैं, आप कौन हैं, आपके पति कौन हैं, आपके पत्नी कौन हैं, आपके माता पिता कौन हैं, आप कौन सा व्यवसाय करते हैं, कौन सी नौकरी करते हैं, सब भूल जाइए। एक ना एक दिन तो भूलना ही है ना, सबको भूलना है, तो उसके लिए अभ्यास करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। लेकिन केवल हमारे संसार को, कर्तव्यों को भूलना काफी नहीं है, लेकिन संसार के विचारों को मन से निकालकर कृष्ण के विचार मन में लगाने चाहिए। यूं ही संसार से दूर रहना, विरक्त रहना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। विरक्ति किस लिए? भक्ति ही परेशान भवो विरक्तिर अन्यत्र चैष त्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथाश्रतः स्युः तुष्टिः पुष्टिः क्षुदपायोनुघासम्। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में ये श्लोक आता है। भक्ति का वर्णन है कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे चित्त में वही परिवर्तन होने लगता है जो कि उस व्यक्ति में होने लगता है जो क्रमशः भोजन ग्रहण कर रहा है। अनुघासम, हर एक थोड़ा थोड़ा सा हम मुंह में प्रसाद डालते रहते हैं तो क्या होता है, तुष्टि हमको बहुत अच्छा लगने लगता है, संतुष्ट हो जाते हम। पुष्टि, शरीर को पोषण मिलता है, ताकत मिलती है, कमजोरी दूर हो जाती है। और तीसरी बात, क्षुद अपाय, भूख मिट जाती है। ये तीन चीजें एक साथ में होती हैं। ऐसा नहीं है कि पहले हम खुश हो जाते हैं प्रसाद लेकर, फिर थोड़ी देर के बाद पोषण शरीर में आ जाता है, ताकत आ जाती है, और उसके थोड़ी देर बाद भूख चले जाता है, ऐसा नहीं। त्रिक एक काल है, ये तीनों चीजें एक ही समय हो जाती हैं। ठीक उसी तरह से प्रपद्यमानस्य, जब हमारा सारा मन, हमारा चित्त, हमारी इंद्रियां, हमारी बुद्धि, हमारा जीवन, हम सब कुछ भगवान के ऊपर केंद्रित करते हैं, तो धीरे धीरे से एक ही साथ, त्रिक एक काल है, तीन वस्तुएं होती हैं। एक है भक्ति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। पर ईश अनुभव है, कि भगवान का अनुभव हमारे जीवन में होने लगता है, श्रद्धा बढ़ती है, हम समझ लेते हैं कि ये भगवान का कार्य हमारे जीवन में है, हमारा कोई नुकसान हुआ हम समझने लगते हैं, हाँ ये भगवान का हाथ है, भगवान की कृपा है। जब ऐसी भावना नहीं रहती तो लोग क्या करते हैं, या तो अपने भाग्य को कोसते हैं, भगवान को कोसते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को कोसते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, तो लोग ऐसा शोक करते हैं। लेकिन जो सच्चा भक्त होता है समझता है कि ये किसी का दोष नहीं है, भगवान की कृपा है मेरे जीवन में। तो ये एक उदाहरण है कि जैसे हम भक्ति में प्रगति करते हैं तो हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं उनको भगवान का इंतजाम समझ लेते हैं हम। भगवान हमारे लिए ऐसे कोई भी वस्तु नहीं करते हैं या कर किए हैं या करेंगे भी जो हमारे हित के लिए नहीं है। तो इस प्रकार से पर ईश अनुभव, मतलब कि भगवान की अनुभूति हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर एक क्षण में हमको दिखाई पड़ता है। और तीसरी बात, विरक्ति अन्यत्र च, विरक्ति किस चीज से विरक्ति, ये अन्यत्र शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अन्यत्र च मतलब कि भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्ति से अलग कोई चीज में विरक्ति, ऐसा नहीं कि केवल विरक्त हो जाना, कृष्ण से भी विरक्त हो जाना, नहीं, केवल उन चीजों से विरक्त होना जो कि हमें कृष्ण भक्ति से दूर ले जाती हैं, जो कृष्ण से भिन्न हैं। वैसे देखा जाए तो कृष्ण से कुछ भी भिन्न नहीं है, सब कुछ कृष्ण का ही है, सब कुछ कृष्ण में है, परंतु क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से हम कृष्ण को भूल जाते हैं, इसीलिए हम इन चीजों से विरक्त होना चाहते हैं, नहीं तो विरक्ति का कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से ये तीन चीजें, तो इन तीनों चीजों को हमें साथ साथ करना चाहिए, इसका अनुशीलन होना चाहिए। इसलिए हम ऐसे जगह में आएंगे तो हमारे लिए ये तीन चीजें होनी है, भक्ति, पर ईश अनुभव और अन्यत्र विरक्ति, अन्य चीजों से विरक्ति या वैराग्य की भावना। विरक्ति की भावना का मतलब नहीं है कि संन्यास लेना है, विरक्ति की भावना है इसका मतलब कि हमारे कुटुंब को, हमारे संसार को, हमारे अन्य कर्तव्यों को भगवान श्री कृष्ण से संबंधित देखना, उससे स्वतंत्र भिन्न नहीं देखना, ये सच्ची विरक्ति है। मेरा धन ये कृष्ण का धन है, मेरा कुटुंब कृष्ण का कुटुंब है, मेरा बंगला मेरी गाड़ी कृष्ण के हैं, ये शरीर मेरा नहीं कृष्ण का है, सब कुछ कृष्ण का है, इसलिए इन सारे चीजों को कृष्ण की सेवा में लगाने चाहिए। पिछले दो दिनों से सुबह को श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में आने वाले श्रीमती कुंती की प्रार्थनाएं हम सुनते आए हैं। आप में से जो पिछले दो दिन में नहीं आ पाए, आपके लिए बड़े संक्षेप में हम बताना चाहेंगे कि पिछले दो दिनों में चर्चा क्या हुई थी। आप सब तो जानते हैं कि कुंती महारानी कौन है, पांडवों की माता है, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं वो, हालांकि माता तुल्य है। कुंती महारानी श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन है, लेकिन कुंती भोज को दत्त दी गई थी इसलिए उनका नाम कुंती हो गया, पहले उनका नाम प्रथा था, और पांडु से विवाह होने के बाद देवताओं के माध्यम से उनके तीन पुत्र हुए, माद्री देवी के दो पुत्र हुए, इन पांच पुत्रों को पांडव नाम से पहचाने जाते हैं। तो ये पांडवों को बहुत कष्ट झेलने पड़े, कुंती महारानी उनके साथ साथ ये कष्ट झेलती रही, लेकिन कभी भी कृष्ण को भूली नहीं। कुंती महारानी के पहले स्तुति के पहले दो श्लोकों में कुंती महारानी कहती हैं, सबसे पहले वो श्री कृष्ण को नमन करती हैं, नमस्य पुरुषम त्वाद्यम, मैं आपको नमन करती हूं जो कि आदि पुरुष हैं। तो कुंती महारानी श्री कृष्ण के माता तुल्य होने के नाते वो क्यों भला भगवान श्री कृष्ण को नमन करेंगी, बल्कि श्री कृष्ण आके हमेशा कुंती महारानी के चरणों को छूते थे, झुकते थे उनके सामने, तो फिर कुंती महारानी उनके सामने नमन क्यों कर रही हैं? क्योंकि हालांकि लौकिक संबंध में श्री कृष्ण उनके भाई का लड़के हैं, पुत्र तुल्य हैं, फिर भी वो जानती हैं कि श्री कृष्ण वास्तव में परम सत्य हैं, आदि पुरुष हैं, भगवान हैं। इसलिए वो समस्त ज्ञान से युक्त होकर ये प्रार्थनाएं अर्पण कर रही है। तो कुंती महारानी के दो प्रार्थनाएं हम कल सुन चुके थे, और वो कहती हैं कि ऐसे कई लोग होते हैं जो आपको पहचानते नहीं हैं, इसलिए कि उनकी आंखों के सामने माया का पर्दा है, माया जवन काच्छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम, जो अज्ञानी है उनकी आंखों के सामने माया का पर्दा है, जिसकी वजह से न लक्ष्य से मूढ़ दृशा, वो आपको देख नहीं सकते, और ऐसे लोग मूढ़ कहलाते हैं। कुंती महारानी कहती हैं, कि जो लोग आपको समझ नहीं सकते, आपको पहचान नहीं सकते, वो मूढ़ हैं, दुष्ट हैं, अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं। तो इसका मतलब यह है कि संसार में कोई भी व्यक्ति कितना भी तथा कथित शिक्षित व्यक्ति क्यों न हो, कितना भी बुद्धिमान क्यों न माना जाए समाज की दृष्टि से, परंतु अगर वो भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानता तो कुंती महारानी के मत में ऐसे व्यक्ति को मूर्ख माना जाना चाहिए। विद्या या ज्ञान की परिभाषा क्या है? परम सत्य को जानना, ये विद्या है। और अविद्या को जानकर अगर हमने विद्या को नहीं जाना तो हमें विद्वान कैसे कहा जा सकता है? केवल अविद्या को प्राप्त करके हम क्या विद्वान हो सकते हैं? ये भौतिक ज्ञान तो विद्या अविद्या है, श्री कृष्ण का ज्ञान सच्ची विद्या, सचमुच विद्या है। और कुंती महारानी कहती हैं कि जैसे एक नट या कलाकार जब नाटक में आता है मंच के ऊपर, तो कई लोग उसको पहचान नहीं सकते हैं, ये राजा बनकर व्यक्ति कौन आया है। फिर बाद में जब अपना पोशाक निकाल देता है तो समझते, अरे ये तो हमारे मोहल्ले वाला आदमी है, हम पहचान ही नहीं पाए उसको। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ पर आते हैं, एक साधारण मनुष्य के रूप में आते हैं, कभी कभी अलग अलग योनियों में भी प्रकट होते हैं, और क्योंकि वो वेश बदल कर आते हैं इसलिए लोग समझ नहीं पाते कि ये भगवान है। कृष्ण को या उनके अवतारों को साधारण मनुष्य, साधारण प्राणी ऐसे समझते हैं, ये बहुत गलती है उनकी। और ऐसा क्यों समझते हैं? नटो नाट्य धरो यथा, क्योंकि उनको प्रेम नहीं है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, इसलिए वो पहचान नहीं पा रहे हैं कि वही परम सत्य हैं जो कि वेश बदल के आए हैं। लेकिन भगवान के भक्त जो होते हैं वो अच्छी तरह से भगवान को पहचान लेते हैं, भले ही वो अपने पोशाक को, वस्त्र को बदल के क्यों ना आए, भिन्न भिन्न अवतारों में क्यों ना आए, लेकिन भक्त सही ज्ञान युक्त होने के नाते श्री कृष्ण को पहचान लेते हैं। अब कुंती महारानी की स्तुति में ये तीसरा श्लोक है, 20वां श्लोक आठवें अध्याय का पहले स्कंद में, तो आइए इसका उच्चारण हम करते हैं। हमारे उच्चारण करने के पूरी समाप्ति के बाद ही आप शुरू कीजिए, ठीक है, एकदम बीच में मत शुरू कीजिए।
तथा परमहंसाना मुनीना ममलात्मना भक्ति योगा विधानार्थम् कथम् पश्ये महि स्त्रियः तथा परमहंसानाम् भक्ति योग विधानार्थम् कथम् पश्ये महि स्त्रियः तथा परमहंसानाम् मुनीनामममात्मनाम् भक्तियोगाविधानार्थम् कथम् पश्ये महि स्त्रियः
अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा याद रखिएगा कि कुंती महारानी बड़े भक्ति भाव से इन प्रार्थनाओं को अर्पण कर रही हैं नम्रता से और श्री कृष्ण अभी चले जाने वाले हैं द्वारका इस भावना में इसलिए जो श्लोक का उच्चारण है वो भी उसी भाव से होना है अनुवाद आप उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम विचारकों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतार लेते हैं तो भला फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती हैं कुंती महारानी दो प्रकार के लोगों का वर्णन यहां कर रही हैं और अपनी तुलना उन लोगों से कर रही हैं परमहंसानाम और मुनि नाम अमल आत्मनाम जो पूरी तरह से हृदय से शुद्ध हैं परमहंस कौन है परमहंस वो हैं परमहंस परम मतलब उत्तम श्रेष्ठ हंस मतलब हंस पक्षी परमहंस उस व्यक्ति को संबोधित करता है जो कि आत्मा और पदार्थ में अंतर जान सकता है आध्यात्मिक और भौतिक में भेद कर सकता है जिस तरह है एक हंस पानी और दूध को अलग कर सकता है पानी और दूध का मिश्रण एक हंस को पिलाएंगे वो केवल दूध निकालेगा पानी छोड़ देगा तो ठीक उसी प्रकार से जो विवेकी लोग होते हैं जो सत्य और असत्य में भली भांति भेद कर सकते हैं वो परमहंस मुनि नाम जिनके तर्क करने के विचार जिनकी बुद्धि आदि बहुत तीव्र है तरह तरह से परम सत्य को जानने के लिए वो खोज करते हैं मानसिक विचार से परम सत्य को जानने का प्रयत्न करते हैं ऐसे लोगों को मुनि कहते हैं तो यहां पर कुंती महारानी सोच रही हैं, कह रही हैं कि मैं तो इनकी तरह नहीं हूं मैं तो एक साधारण स्त्री हूं वैसे भगवान श्री कृष्ण जो कि परम सत्य हैं वो केवल बड़े दार्शनिकों के द्वारा नहीं जाने जा सकते किसी भी व्यक्ति के पास बहुत तीव्र बुद्धि हो संसार की दृष्टि से बहुत शिक्षित हो बहुत डिग्रियां विश्वविद्यालय में प्राप्त किए हों और कितने भी सारे भौतिक योग्यताएं उसके पास क्यों न हो लेकिन भगवान ऐसे व्यक्ति से समझे नहीं जा सकते भगवान को अगर समझना है तो इसके लिए कोई और पद्धति है जो केवल बड़े बड़े मुनि लोग होते हैं वो भी भगवान को समझ नहीं सकते हैं ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्य वायो रथापि मनसो मुनि पुंगवानां सोप्यस्ति यत् प्रपदसीन्य विचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो मुनि पुंगवानाम मतलब सर्वश्रेष्ठ मुनियों में से जो सर्वश्रेष्ठ है वायोरथापि वो वायु के गति पर अपने मन को चलाएं इधर उधर भ्रमण करें ब्रह्मांड का विश्लेषण करने के लिए कि सत्य क्या है असत्य क्या है और ऐसे मन के गति पर भी चलते रहेंगे फिर भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के नाखून के अग्र भाग तक भी नहीं पहुंच पाएंगे भगवान श्री कृष्ण ऐसे मुनियों के बुद्धि उनके तर्क के बाहर है ऐसे व्यक्तियों से हम भगवान को नहीं जान सकते भगवान केवल तर्क वितर्क से बुद्धि से इंद्रियों से बल से धन से किसी भी भौतिक चीज से नहीं जाने जा सकते केवल वो हृदय के प्रेम से भक्ति से जाने जा सकते हैं। जब तक किसी व्यक्ति के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा नहीं हो तब तक वो व्यक्ति भगवान को जान नहीं पाएगा। भले वो व्यक्ति कितना भी शिक्षित क्यों न हो या भले कोई भी व्यक्ति कितना भी अशिक्षित क्यों न हो, अगर ऐसे अशिक्षित व्यक्ति को कृपा मिली है तो परम सत्य को जान लेगा। और कितना भी शिक्षित भी हो, इतने सारे डिग्री प्राप्त कर लिए हो, लेकिन भगवान की कृपा नहीं है तो भगवान को नहीं जान पाएगा। अथापि ते देव पदाम्बुजत्वय प्रसाद लेशानुगृहीत एव ही जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्यमेको प्रचिरं विचिन्वन्। ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, अथापि ते देव पदाम्बुज, कि हालांकि हे प्रभु, ऐसे कोई लोग हैं जो चिरकाल से आपको जानने के लिए मानसिक तर्क वितर्क करते हैं, मानसिक विचार करते हैं, अपने मन गढ़े ढंग से तरह तरह के विचार करते हैं, कोई तर्क करते हैं, फिर भी वो आपको चिरकाल ऐसे करने से भी समझ नहीं पाएंगे। कब तक नहीं समझ पाएंगे? प्रसाद लेश अनुग्रहीत एव ही, प्रसाद मतलब उनकी कृपा, अनुग्रह, जब तक भगवान श्री कृष्ण का अनुग्रह, उनकी कृपा, मर्सी, ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं आएगा तब तक कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को जान नहीं पाएगा। फिर प्रसाद एक बार मिल गया भगवान श्री कृष्ण का, केवल ये खाने का प्रसाद नहीं, प्रसाद मतलब भगवान की कृपा, हाँ इस प्रसाद से भी वो प्रसाद मिल जाएगा, ये भी प्रसाद का एक रूप ही है। जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो, फिर वो भगवान की महिमा को जान पाएगा। भगवान को जानना ये कोई साधारण बात नहीं है। साधारण से लोग कहते हैं हम भगवान को जानते हैं, कृष्ण को जानते हैं, लेकिन ऐसे इतना आसान नहीं है। तो खैर, कुंती महारानी तो सोच रही हैं कि मैं तो ऐसे कोई योग्य दार्शनिक नहीं हूं। जो महिलाएं होती हैं साधारणतः देखा जाता है कि ज्यादा दर्शन में उनको इतनी रुचि नहीं रहती है, दार्शनिक दृष्टि से बहुत किसी विषय में बहुत तीव्रता से भीतर जाना, उसका विश्लेषण करना वगैरह, उसमें ज्यादा रुचि नहीं होती है। तो कुंती महारानी महिला होने के नाते ऐसे सोच रही हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसे बड़े बड़े दार्शनिकों को देखकर प्रभावित नहीं होते। प्रभुपाद कहते हैं अपने तात्पर्य में, सिंसियरिटी ऑफ पर्पस, मतलब कोई व्यक्ति हृदय से सिंसियर है, वास्तव में हृदय से जानना चाहता है भगवान को, नम्र है, तब भगवान अपने आप को ऐसे व्यक्ति के सामने प्रकट कर देते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये देखा जाता है कि सारे जगत में जहां कौन से भी धर्म में ज्यादातर कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो तो महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है, कहां भी ऐसे देखा जाता है। ऐसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। और ऐसा क्यों? प्रभुपाद कहते हैं कि अपने स्वभाव के दृष्टि से जो महिलाएं हैं वो ज्यादा आसानी से भगवान के प्रभुत्व को, उनके स्वामित्व को स्वीकार करते हैं, और भगवान के सामने उनको दंडवत करना, प्रणाम करना वो आसानी से हो सकता है, जो कि पुरुषों को कभी कभी नहीं होता पुरुषत्व की भावना की वजह से। और इसलिए जो महिलाएं होती हैं वो अच्छी तरह से भगवान की भक्ति करती हैं। और ज्यादातर देखा जाता है कि ज्यादा सिंसेरिटी से, ज्यादा उत्साह से करती हैं। सत्संग में भी, हमारे मंदिर में भी कभी कभी हम देखते हैं महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है और पुरुष जो है प्रभु जो कम होते हैं। भक्ति मार्ग में भी ज्यादा सिंसियर जो है वो महिलाएं होती हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि सारे विश्व भर में ये एक पद्धति है। कोई भक्त हमको बता रहे थे जो एक अपना कारखाना चला रहे हैं कि आजकल बेलगाम में एक पद्धति चल रही है कि महिलाओं को कर्मचारी के रूप में रखना, और बड़े बड़े मशीन चलाना भी अभी आजकल महिलाएं चला रही हैं, बोल रहे थे हमको, क्योंकि महिलाएं ठीक से सेवक काम करती हैं, पुरुषों की तरह बीच बीच में इधर उधर राजनीति करना, कुछ करना, ये कर नहीं करते हैं। तो ऐसे भक्त हमको बता रहे थे कि आजकल कारखानों में ये सब धीरे धीरे चल रहा है बेलगाम में। तो खैर, भक्ति मार्ग में भी ऐसा आता है। तो कुंती महारानी सोच रही है कि मैं इतनी एक साधारण स्त्री हूँ, मैं तो कभी गुरुकुल में नहीं गई, विश्वविद्यालय में नहीं गई, मैं तो कुछ बड़ी पंडिताइन नहीं हूँ, तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे नम्रता से, ऐसे हृदय की भावना से प्रसन्न होते हैं। केवल बाहरी दिखावा से भगवान प्रसन्न नहीं होते। हम देखते हैं कि कई ऐसे घटनाएं श्रीमद् भागवत में भी है, जिनकी एक उसका उदाहरण आपको बताएंगे। जब श्री कृष्ण बलराम और ग्वाल बाल वन में गायों को चराते जा रहे थे, तो उस समय उनको भूख लगी। उन्होंने अपने ग्वाल बाल मित्रों से कहा कि आप जाओ और यहाँ पास में जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं उनसे थोड़ा यज्ञ का अवशिष्ट लेकर आओ, प्रसाद लेकर आओ। तो ब्राह्मणों ने साफ साफ इनकार कर दिया, बल्कि उनका तिरस्कार कर दिया, उन बालकों का, उनकी ओर देखा भी नहीं। तो उदास होकर ये बच्चे चले आए। फिर श्री कृष्ण ने कहा कि अब उनके पत्नियों के पास जाओ। तो जब पत्नियों के पास गए तो पत्नियों ने देखा कि अरे कृष्ण के मित्र आए हैं, तो तुरंत उनको देना चाहिए। तो जो भी उनके पास भोजन था, प्रसाद था, वो सब उन्होंने तुरंत उनको दे दिया। कितना चाहिए था उतना दे दिया, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में सुना था, हालांकि श्री कृष्ण का दर्शन कभी नहीं किया था। ये मथुरा में रहा करती थी, मथुरा और वृंदावन के बीच में, तट में, जैसे रुक्मिणी देवी हैं। उन्होंने जब निश्चय किया कि मुझे श्री कृष्ण से विवाह करना है, तब तक उन्होंने श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष रूप से देखा ही नहीं था, केवल सुना था कृष्ण के बारे में। क्योंकि उनके पिता राजा भीष्म के दरबार में नारद मुनि जैसे कई संत और भक्त आया करते थे, जो श्री कृष्ण का गुणगान करते रहते, और उसको सुनते सुनते श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण निर्माण हो गया था। ठीक उसी प्रकार से ये जो ब्राह्मणों की पत्नियां हैं, इन्होंने भी ऐसे श्री कृष्ण के बारे में सुनकर कृष्ण भक्ति प्राप्त कर ली थी। फिर श्री कृष्ण ने ये प्रसाद बड़े आनंद से स्वीकार किया और इन पत्नियों के ऊपर, याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों के ऊपर बहुत कृपा बरसाई। जब ब्राह्मणों को पता चला तो अपने आप को वो कोसने लगे, अपने आप को धिक्कारने लगे कि धिक्कार हो हमारे ज्ञान का, धिक्कार हो हमारे वेद पठन का, धिक्कार हो हमारे मंत्र उच्चारण का, तंत्र मंत्र में विशारद है, धिक्कार हो इसके लिए, क्या फायदा। जब परम सत्य श्री कृष्ण हमारे सामने आए थे, वो हमसे कुछ मांग रहे थे, उस समय हमने कुछ नहीं किया, उनको तिरस्कार कर दिया। लेकिन हमारी पत्नियां जो हैं, उनको यज्ञ के विधियां वगैरह मालूम नहीं, मंत्रोच्चारण पता नहीं है, लेकिन उन्होंने किस तरह से भक्ति भाव से श्री कृष्ण का स्वागत किया, उनकी सेवा की। तो इस समय ये जो ब्राह्मण हैं, वो नम्र बन गए, पश्चाताप हो गया उनको कि हमें इतना घमंड हो गया था। तो कुंती महारानी बड़ी सुशिक्षित महिला है, बहुत ज्ञान है उनको, लेकिन फिर भी अपने आप को भगवान के सामने ऐसे नम्र भाव से पेश करती हैं। ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है। हम जो भी हों संसार में, हमारा समाज में जो भी पद हो, समाज के किसी भी वर्ग के हम क्यों न हो, तथा कथित ऊंचे जाति के या तथा कथित नीच वाले जाति के, अमीर हो, गरीब हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, हर एक भक्त को यही सोचना चाहिए कि मैं अयोग्य हूं। अगर कोई भक्त सोचेगा कि मैं अच्छा भक्त हूं, मैं योग्य हूं इस चीज को करने के लिए, तो वो योग्यता उसकी नहीं है, हम समझ सकते हैं। जब व्यक्ति सोचता है कि मैं अयोग्य हूं, वही उसकी योग्यता है भक्ति करने के लिए। तो कुंती महारानी ऐसे नम्रता से बतला रही है। और क्योंकि कई वर्ग समाज में बताए गए हैं, और वैदिक दृष्टिकोण से भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इनमें भेद किया जाता है, तो चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि, ऐसे कई वर्ण हैं। जो तो स्त्री वर्ग है उनको वैश्य, शूद्र ऐसे वर्गों में कहा गया कभी कभी शास्त्रों में, या श्रीमद् भागवत में कहा गया है स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम। द्विज बंधु मतलब जिसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है परंतु ब्राह्मणों के गुण उसमें नहीं है, सच्चा ब्राह्मण नहीं माना जाता वो, तो ऐसे वर्ग में माना गया है। परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तो एक भौतिक दृष्टि से ये विभाजन किया हुआ है, जो व्यक्ति मेरा भजन करते हैं, मेरे भक्त हो जाते हैं, वो इन भौतिक विभाजनों के परे हो जाते हैं। इसलिए भगवद गीता के 9वें अध्याय में वो कहते हैं, माम ही पार्थ विपाश्रित्य ये पिस्यु पाप योनयः, स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रस ते पियान्ति पराम गतिम। वो कहते हैं कि अगर कोई स्त्री भी हो, शूद्र हो, वैश्य हो, या कोई भी वर्ग का क्यों न हो, वो अगर मेरे शरण में आ जाते हैं, उनको परम गति की प्राप्ति हो सकती है। तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि भक्ति मार्ग में आने से इन भौतिक विभाजनों का कोई मतलब नहीं रहता, इन भौतिक विभाजनों के हम परे हो जाते हैं। शास्त्रों में महिलाओं के बारे में बहुत कुछ वर्णन आता है। चाणक्य पंडित भी बहुत कुछ नीति शास्त्र में कहते हैं कि महिलाओं के कभी कभी गुण कैसे होते हैं, कभी कभी जब ईर्ष्या हो जाती है, जैसे उस दिन हम चर्चा कर रहे थे कि गांधारी को इतनी सुशिक्षित सुशील होने के बाद भी कुंती महारानी के प्रति ईर्ष्या हो गई कि इसको मेरे से पहले बच्चा हो गया, बहुत गुस्सा आया। तो ऐसे कई जगह वर्णन होता है, लेकिन प्रभुपाद समझाते हैं कि अगर कोई महिला भक्त बने तो फिर ये सब चीजें उसके ऊपर लागू नहीं होते हैं। तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि महिला के ऊपर और किसी राजनीति के व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी भी बदल सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने अपने महिला शिष्य के ऊपर देखा, जानबूझकर उसकी ओर दृष्टि लगाई। पाश्चात्य देश की एक महिला थी, यमुना माता जी। क्यों यमुना, ठीक है ना? तो यमुना देवी ने कहा, हाँ प्रभुपाद ठीक है। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, नहीं, तुम जैसे महिलाओं के लिए नहीं है, ये केवल उन महिलाओं के लिए है जो भक्त नहीं है। जो भक्त हैं वो इन विभाजनों से परे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कुंती महारानी सिखला रही हैं कि कैसे, किस भावना से हमको यहां पर रहना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हर अवस्था में अपने आप को नीच समझना, दीनहीन समझना, ऐसे हम अपने आप के बारे में सोचेंगे कभी घमंड नहीं आएगा। जब घमंड आ जाता है, कोई ऐसे ऊंच नीच का विचार आ जाता है, तब भक्ति नष्ट हो जाती है। तो भक्ति में भी आगे चलते चलते हमारे अंदर ये घमंड आने की संभावना है। हम सोच सकते हैं कि हम अच्छा प्रवचन देते हैं, अच्छा कीर्तन करते हैं, अब हम वरिष्ठ भक्त बन गए, ये है वो है। तो कितने तरह तरह से हमारे मन में घमंड आ सकता है। तो इसके बारे में हमें बहुत सावधान रहना चाहिए और बार बार अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि वास्तव में मेरी कोई योग्यता नहीं है, हमें नम्र बनना चाहिए, बनना चाहिए। और अगर खुद हम नहीं बनेंगे तो दुनिया में बहुत सारे भक्त हैं जो हमें इस कार्य में मदद करेंगे, चिंता नहीं है, है ना? ये संसार एक चक्की के बराबर है। चक्की जब घूमती है तो सबको पिसा के डालती है, पीस के, पीस पीस के। हर एक व्यक्ति जितना भी बड़ा बड़ा आदमी क्यों ना हो, आज राजा है कल नहीं है। कहां है ये राजा, तो कल के राजा कहां पर है? तो भक्त वो चक्की में अटकता नहीं, चक्की के बीच वाले डंडे में रह जाता है, पर उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो पहले से नम्र है, इसलिए उसको इसके ऊपर चक्की काम नहीं करती। लेकिन थोड़ा भी घमंड आ गया तो ये माया की चक्की जो है वो काम करेगी, फिर हमको बहुत चोट पहुंचेगा। एक किसी कड़क वस्तु को तोड़ने के लिए, तोड़ने से बहुत आवाज आता है, लेकिन कोई ऐसे घास का तिनका हो, उसको झुकाने में कुछ करने में कुछ तकलीफ नहीं होती है क्योंकि घास तो पहले से नम्र होता है, लेकिन लकड़ी है वो कड़क होती है। तो उसी प्रकार से हम भी कड़क घमंड से रहेंगे तो जब कुछ हो जाएगा कड़क, तब बहुत दर्द होगा अपने को। जब अहंकार को चोट पहुंचेगा तब अरे रे रे रे, बहुत दुख होगा हमको। तो जब हमारा कोई अपमान करेगा, हमको कोई सम्मान नहीं करेगा जैसे हम चाहते हैं, बहुत कष्ट होगा हमको मन में। और ऐसे कष्ट से ज्यादा ज्यादा कोई दुख नहीं है। जो व्यक्ति सम्मान बहुत चाहता है और उसको नहीं मिलता, या इससे भी अधिक कोई उसका अपमान करता है, तो ऐसा दुख कहीं संसार में नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति पहले से अपमान सम्मान चाहता ही नहीं है, अपने आप को ही दीनहीन समझता है, तो कोई भी कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अपमान करने वालों को बुरा लगेगा उसके ऊपर ही ये परिणाम आ जाएगा। तो ऐसे भक्त के ऊपर जो अपमान करते हैं, या उनका तिरस्कार या उनकी निंदा करते हैं, वो उल्टा उनके ऊपर ही आ जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हर अवस्था में कुंती महारानी की तरह रहकर हम भक्ति करें। हालांकि कुंती महारानी लौकिक दृष्टि से श्री कृष्ण के श्रेष्ठ स्तर में है, वरिष्ठ है श्री कृष्ण के प्रति। श्री कृष्ण आके हमेशा उनके चरणों को छूते थे, नमस्कार करते थे, और कुंती महारानी को कभी कभी आदेश भी देती थी। जब छोटे थे तब से ही कुंती महारानी श्री कृष्ण को देखती आई थी। और ऐसे शास्त्र में वर्णन आता है कि हरिवंश पुराण में कि कभी कभी बचपन में अर्जुन और श्री कृष्ण लड़ाई करते थे, खेल खेल में कुंती महारानी देखते थे और अर्जुन जीत जाते थे। तो कुंती महारानी उस अवस्था से श्री कृष्ण को देखा था, लेकिन फिर भी आज इस नम्र भावना से श्री कृष्ण के सामने वो अपने आप को पेश कर रही है। भगवान के अर्चा विग्रह के सामने जाते हुए भी हमें इसी तरह से प्रार्थना करनी चाहिए भगवान के, कभी घमंड लेकर नहीं जाना है। तो कुंती महारानी कहती हैं कि आपको समझने के लिए भक्ति योग विधानार्थम, आप यहां भक्ति योग प्रदान करने के लिए आए हैं, लेकिन किन लोगों के लिए, कौन योग्य है ये भक्ति योग के लिए? जिसका व्यक्ति, जिसका हृदय जो है वो साफ है, अमल आत्मनाम, अमल, जिसका हृदय अमल है, जिसमें कोई काम नहीं, लोभ नहीं, क्रोध नहीं, ईर्ष्या नहीं। तो इसलिए वो कह रही हैं कि भक्ति योग कोई साधारण बात नहीं है। तो कुंती महारानी के मत में भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ पथ है। वो कहते हैं कि ये जो ज्ञानी लोग, मुनि लोग, ये तो ज्ञान योग का अभ्यास करते हैं, लेकिन ज्ञान योग से श्रेष्ठ है भक्ति योग। और भक्ति योग प्राप्त करने के लिए हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए। तो ये तो केवल बड़े बड़े परमहंसों के लिए योग्य है। तो ये परमहंस हैं जो सत्य को जानते हैं असत्य से भेद करके, और ये सत्य क्या है? श्री कृष्ण है। सारे सृष्टि में परीक्षा करके वो देख लेते हैं कि सृष्टि में कोई दम नहीं है, केवल श्री कृष्ण ही सब कुछ है, इस सृष्टि के भीतर भी और बाहर भी। तो ऐसे भावना में आकर वो कुंती महारानी सोच रही, मैं तो परमहंस नहीं हूं, मैं तो मुनि नहीं हूं। और इसी भावना से वृंदावन की गोपियां भी प्रार्थना करती हैं। ये श्लोक हमने आपको कई बार सुनाया होगा, लेकिन इतना सुंदर श्लोक है और इस विषय से आज बिल्कुल मिलता जुलता है। गोपियां जब श्री कृष्ण के सामने आई तो वो भी कहने लगी, आहुश्चते नलिननाभ पदारविंदम योगेश्वर हृदि विचिन्त्यम अगाध बोधये संसार कूप पतितोत्तरणावलंबम गेहे जुषा मनसि सदा मनस्युदयात् सदानः। गोपियां कहती हैं कि हे कृष्ण, आपके चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए योगेश्वरेर, जो बड़े बड़े योगी हैं, और अगाध बोधय, जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, जैसे या मुनि नाम, जैसे कुंती महारानी वर्णन करती हैं, ये सब बहुत लंबे समय तक तपस्या करते हैं आपके चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए। आहुष्चते नलिन नाभ, नलिन, नलिन मतलब कमल पुष्प, नाभ मतलब जिनकी नाभि कमल पुष्प के समान है, इसका वर्णन आने वाले श्लोकों में कुंती महारानी करने वाली हैं। आहुष्चते नलिन नाभ पदारविंदम योगेश्वर हृदय विचिन्त्यम अगाध बोधये, अपने हृदय में ध्यान करते हैं आपको प्राप्त करने के लिए। और ऐसे लोग कभी आपको प्राप्त करते हैं, कभी नहीं करते हैं। लेकिन हमारी बात क्या है? गेहे जुषाम, हम लोग साधारण गृहिणी हैं, अपने घर में रहते हैं। संसार कूप पतित, हम इस संसार के अंधकूप में, अंधे कुएं में जिसमें कोई पानी नहीं है, केवल अंधकार है, ऐसे अंधे कुएं में गृहस्थ जीवन में हम पड़े हुए हैं, केवल संसार में रत हैं हम। उत्तरण, हमारा उद्धार कीजिए आप, और उद्धार कर हमें आपके चरण कमलों में स्थान दीजिए, ये भक्त की प्रार्थना होनी चाहिए। फिर आगे कुंती महारानी अगला श्लोक बोलेंगे। कुंती महारानी की स्तुतियां जहां तक हो सके सबको कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। सारे श्लोक कंठस्थ नहीं हो पाए, कम से कम थोड़े श्लोक तो अच्छी तरह से कंठस्थ करने चाहिए। ये श्लोक सबने सुना है ना। तो हम जब समाप्त करेंगे बोलना उस समय आप बोलिए, ठीक है।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
प्रभुपाद द्वारा कुंती महारानी कह रही है, अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र देवकी के लाडले नंद तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों के बालक एवं गवों तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। इस श्लोक में कुंती महारानी परम सत्य की पहचान दे रही हैं, परिचय करा के दे रही हैं कुंती महारानी हम सबको। भगवान को अलग अलग नामों से संबोधित कर रही हैं, कृष्ण, वासुदेव, देवकी नंदन, नंद गोप कुमार, गोविंद। एक ही श्लोक में भगवान के पांच नामों का वर्णन है, एक के बाद एक वो ऐसे नामों का उच्चारण कर रही हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के केवल नामों का उच्चारण करने मात्र से भगवान का गुणगान होता है, क्योंकि हर एक शब्द में कोई अर्थ होता है, उनको कोई गुणों का, उनके लीला का कोई वर्णन आता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण वास्तव में जिनके कोई नाम है ही नहीं, भक्त उनको अनेक नाम देते हैं। तो जैसे कुंती महारानी अनेक नाम दे रही हैं परम सत्य को, और सबसे पहले वो कृष्ण कहती हैं। उन्होंने पहले श्लोक में ही कह दिया है, नमस्य पुरुषम तू आद्यम, आप आदि पुरुष हैं। तो ये आदि पुरुष कौन है, अभी स्पष्ट रूप से पहले ही वो बता रही हैं कि ये कृष्ण है। और कृष्णाय, अनेक अवतारों में से श्री कृष्ण का अवतार जो है वो सबसे मधुर माना जाता है। क्यों ऐसे? क्योंकि श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की हैं, श्री कृष्ण ने जो अपने कार्य प्रदर्शित किए, वो इतने मीठे हैं कि सबका मन हरण कर लेते हैं। आप तो जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के से संबंध चार बहुत मधुर चीजें हैं। वो चार माधुरी कौन से हैं जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं? रूप माधुरी। भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य अतुलनीय है, अन्य अवतारों का भी सौंदर्य ऐसा नहीं है जैसा कि श्री कृष्ण का है। दूसरा वेणु माधुरी, और कोई भी अवतार बांसुरी नहीं बजाते हैं, केवल श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, और इसका प्रभाव बिल्कुल विशेष करके उनकी बाल लीलाएं जो कि उन्होंने माता यशोदा, नंद महाराज, अन्य गोप गोपियों के साथ, अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ किए। और चौथा कौन सा है? वेणु हो गया, लीला हो गया, प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी मतलब वो हमेशा अपने प्रेममयी भक्तों से घिरे हुए रहते हैं, विशेष करके वृंदावन की गोपियां। तो ये चार माधुरी हैं श्री कृष्ण के। और यहाँ पे कुंती महारानी स्मरण कर रही हैं सबसे ज्यादा लीला माधुरी, कि उन्होंने कितने सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं अपने बचपन में वृंदावन में, गोकुल में जाकर। वैसे उनका जन्म तो देवकी और वसुदेव से हुआ था। वैसे देखा जाए तो श्री कृष्ण एक राजकुमार थे, क्योंकि वसुदेव भी एक राजा थे, राजा शूरसेन के पुत्र थे। परंतु जैसे ही उनका जन्म हुआ तो उनको वसुदेव गोकुल में ले गए भगवान के आदेशानुसार। और फिर उसके बाद श्री कृष्ण यशोदा मैया और नंद महाराज के शरण में रहे, उन्होंने उनका पालन पोषण किया। इसलिए नंद महाराज और यशोदा मैया के संग में भगवान कृष्ण ने बहुत सारे लीलाएं किए। राजा की लीला नहीं की वृंदावन में भगवान कृष्ण ने। प्रभुपाद कहते हैं कि श्री रामचंद्र बचपन से अंत तक वो राजकुमार या राजा रहे, लेकिन श्री कृष्ण केवल पहले थोड़े एक क्षण के लिए मृत्यु के समय, अपने जन्म के समय केवल वो राजा रहे। और फिर वृंदावन में तो कोई उनको राजा कहकर नहीं पुकारता था, आगे चल के फिर मथुरा द्वारका में वो राजा बन गए, लेकिन वृंदावन में कोई राजा नहीं था। और वृंदावन में रह के इतने मधुर मधुर लीलाएं भगवान ने किए कि सबका मन उन्होंने आकर्षित कर दिया, सबके ऊपर इन सुंदर लीलाओं के माध्यम से कृपा बरसाई। भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं इस भौतिक जगत में, ऐसे सुंदर लीलाओं से सबका मन हरण कर लेते हैं, और यही उनकी कृपा है। उनका जो सबसे आकर्षक रूप है, उनकी आकर्षक लीलाएं हैं, वो इसलिए यहां पर प्रदर्शित करते हैं कि लोगों के ऊपर वो कृपा बरसाएं, फिर से उनको गोलोक वृंदावन में वापस लेकर जाएं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि श्री राम से भी ज्यादा कृपालु श्री कृष्ण है। और देवकी और वसुदेव, उन्होंने श्री कृष्ण को जन्म तो दिया, लेकिन क्योंकि जन्म से तुरंत बाद श्री कृष्ण गोकुल चले गए, तो देवकी और वसुदेव को श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का आनंद मिला ही नहीं। वो आनंद केवल यशोदा मैया और नंद महाराज और वृंदावन के गोप गोपियों को मिला। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भागवत के आधार पर कि वृंदावन के जो निवासी हैं वो बहुत भाग्यशाली है। स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौ कसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। वो कहते हैं व्रज ओकसाम, व्रज मतलब व्रज भूमि, वृंदावन की भूमि, ओकसाम मतलब जो निवास करने वाले हैं। तो अहो भाग्यम जो वृंदावन के निवासियों के बारे में वो कहते हैं कितना भाग्य है उनका, अहो भाग्य है, दो बार कहते हैं। क्यों? क्योंकि यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, जो परम आनंद प्रदान करने वाले, जो पूर्ण ब्रह्म हैं श्री कृष्ण, अब उनके मित्र बनकर आए हैं और उनको आनंद प्रदान कर रहे हैं। तो देखिए वृंदावन के निवासियों का सौभाग्य कितना है कि ब्रह्मा जी, जो कि इस ब्रह्मांड के भीतर सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं, सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, सृष्टिकर्ता हैं, वो भी वृंदावन के निवासियों का गुणगान कर रहे हैं। कहां ब्रह्मा जी और कहां वृंदावन के निवासी? अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो ब्रह्मा जी तो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, इस सारे ब्रह्मांड के प्रथम ब्राह्मण। और उनके गुरु कौन हैं? साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने उनको दीक्षा दी है, ब्राह्मण दीक्षा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनको मिलने आए, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उनको उपदेश दिया, उनका उपनयन संस्कार कराया, उनको ब्राह्मण दीक्षा दे दी। और सृष्टि में उनके जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है, सारे सृष्टि की रचना उन्होंने की है, ये 14 भुवन उन्होंने बनाए, इन 14 भुवनों के ऊपर उन्होंने तरह तरह 84 लाख योनियों को स्थित कराया। हर एक प्राणी को, हर एक व्यक्ति को, मनुष्य को अपने अपने पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार एक उपयुक्त शरीर दिया, उपयुक्त वातावरण दिया, उपयुक्त लोक या ग्रह दिया। इतने बुद्धिमान। देखिए, हमें एक छोटे से ऐसे कार्यक्रम करने के लिए कितना व्यवस्थापन करना पड़ता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है। ठीक है, आप सब सब्जी करिए, काटिए, आप सब ये कीजिए, आप वो कीजिए, आप बस ड्राइवर को आप देखिए, ये कीजिए, फिर कुछ गड़बड़ हो जाता है, बस वाले नहीं आते टाइम में, कोई कितना सब गड़बड़ हो जाता है। एक छोटे से एक दिन के कार्यक्रम के लिए कितना कुछ देखना पड़ता है। और ब्रह्मा जी तो सारे सृष्टि को देख रहे हैं और बराबर देख रहे हैं। ऐसे कभी नहीं होता कि चांद हमारे को सिर पे गिर जाता है, चांद चलते चलते कुछ गड़बड़ हो जाता है, उसके ब्रेक फेल हो जाते, गिर जाता है हमारे ऊपर, ऐसा नहीं होता। सब कुछ बराबर अपने अपने पथ में चल रहा है। हालांकि शक्ति तो भगवान की है, परंतु ब्रह्मा जी उनकी ओर से उनका प्रतिनिधित्व करते हुए व्यवस्थापन कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। तो ऐसे जो सबसे बड़े पंडित, आदि कवि मतलब सबसे पहले दार्शनिक इस ब्रह्मांड के, सबसे बड़े दार्शनिक, सबसे बड़े विद्वान, जिनके मुख से वेद शास्त्र निकले, ये ब्रह्मा जी अहो भाग्यम कह रहे हैं। किसके लिए? वृंदावन के निवासियों के लिए। वृंदावन के निवासी क्या हैं? वो तो वैश्य जाति के हैं बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो, और वो सब गांव में निवास करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि कोई बड़े बड़े शहर में रहते थे, राजमहल में रहते थे, चांदी सोने से के बंगले में रहते थे, साधारण गांव में। और उनका धन क्या था? गौवे उनके धन थे, गाय उनके पास थी, लाखों लाखों गाय थी, उनको चराने ले जाते थे, उनसे दूध निकालते और खूब दूध पीते, दही मक्खन वगैरह उनके पास भरपूर रहता, ऐसे संतुष्ट रहते। और ये वृंदावन के निवासी कभी जाकर गुरु से बहुत शास्त्रों के बारे में शिक्षा नहीं प्राप्त करते थे, बचपन से ही बच्चों को गायों को चराने के लिए लिया जाता था। साधारणतः देखा जाता है कि वैदिक सभ्यता में 5 साल की उम्र में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता था, लेकिन वृंदावन में हम ऐसा नहीं देखते। वृंदावन में जब से श्री कृष्ण 5 साल के हुए, बल्कि उससे पहले गोप और गोपियों ने श्री कृष्ण और उनके मित्रों को, उनके जो बराबर की उम्र वाले बच्चे थे, उनको गायों के बछड़ों को चराने के लिए अनुमति दे दी। और गोपाष्टमी के दिवस पर फिर उन्होंने बड़े गायों को चराना शुरू कर दिया। तो श्री कृष्ण वृंदावन में होते हुए कभी गुरुकुल में नहीं गए, केवल जब वो मथुरा गए, अब क्षत्रिय बन गए थे, तब उनको यह आवश्यक पड़ा कि वो गुरु से विद्या प्राप्त करे। फिर वो अवंतीपुर गए, जहां आज उज्जैन है, और सांदीपनि मुनि के आश्रम में रहकर उन्होंने विद्या प्राप्त की। तो वृंदावन के निवासी कभी गुरुकुल नहीं गए, उन्होंने कभी शास्त्रों को नहीं पढ़ा, ये बड़े बड़े यज्ञ क्या है, मंत्र क्या है, उनको नहीं मालूम थे, छोटे गांव में रहने वाले लोग थे। फिर भी ब्रह्मा जी इनकी स्तुति कर रहे हैं कि इनके जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है। और ऐसा क्यों? क्योंकि परम सत्य भगवान श्री कृष्ण उनके सबसे मधुर रूप में, उनके सबसे मधुर लीलाएं करते हुए एक साधारण व्यक्ति की तरह उनके बीच में रह रहे हैं, और ये लोग उनको पहचान नहीं पा रहे हैं उनके स्नेह की तीव्रता की वजह से। ये है उनका सौभाग्य। इसलिए कुंती महारानी ऐसे ही श्री कृष्ण का स्मरण कर रही हैं। कृष्णाय, सबसे पहले कृष्णाय बोलती है, फिर वासुदेवाय। वासुदेव शब्द के कई अर्थ होते हैं। एक, वसुदेव के पुत्र वासुदेव, देवकी के पति का नाम था वसुदेव, और वसुदेव के पुत्र हुए वासुदेव। तो श्री कृष्ण को जब कुंती महारानी वासुदेव कहती हैं, तो अपने पिता का, उनके पिता का नाम भी ले रही हैं, अपने भाई का नाम वासुदेवाय। वासुदेव शब्द का दूसरा अर्थ यह है कि जो सर्वव्यापी है, सब जगह है, सब जगह उपस्थित है। हम कल देख चुके हैं, कुंती महारानी ने कहा है अंतर बहिर अवस्थितम, कि श्री कृष्ण अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, सर्वत्र हैं, सब जगह है वो। तो कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण को वासुदेवाय कह के संबोधित करते हुए ये बतला रही हैं कि हालांकि श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र हैं, फिर भी वो यहाँ पे खड़े हैं मेरे सामने, और वो है कृष्ण, वासुदेव कृष्ण। ऐसे कई दार्शनिक होते हैं जो परम सत्य को निराकार मानते हैं, सोचते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, व्यक्तित्व नहीं है, और इसके लिए वैष्णव आचार्य ने तुलना दी है कि वास्तव में ऐसा नहीं है। परम सत्य एक व्यक्ति है और उनके जो शरीर के दिव्य शरीर का तेज है, ये वो निराकार ज्योति है जिसके पीछे ज्ञान योगी लोग भागते हैं, और इसकी तुलना सूरज से की गई है। जो निराकार है वो सूरज की किरणों के बराबर है, जो सबके हृदय में स्थित भगवान का परमात्मा रूप है वो सूरज के गोला 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 के समान है, गोलाकार के समान है, और जो सूरज के भीतर सूर्य देव हैं वो भगवान के समान हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो व्यक्ति सूर्य लोक में ही निवास करता है उसको सूर्य की किरणों से क्या लेना देना, क्या वो सूर्य की किरणों पर निर्भर है, क्या वो उससे आकर्षित होता है, नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, भगवान श्री कृष्ण के लोक में उनके भक्तों के संग में रहता है, उसको ये निराकार मामले से क्या लेना देना है। बड़ा झंझट है ये निराकार, नहीं चाहिए भक्तों को निराकार, निराकार से क्या लेना, अपने को व्यक्ति भगवान चाहिए, अपने को कृष्ण चाहिए जो कि मूल परम सत्य है। इसलिए ईशोपनिषद में भक्त प्रार्थना करते हैं, हिरण्मयेन पात्रेण सत्य सापहितं मुखम तत्तन पोषत अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। वो कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपका सुंदर मुखारविंद देखना चाहता हूं, इसलिए आपके सामने जो ब्रह्म तेज है इसको हम देख नहीं सकते, इसलिए आपका सुंदर मुख हम देख नहीं पा रहे हैं, तो इस ब्रह्म तेज को हटाइए ताकि आपके सुंदर रूप का दर्शन हम कर सकें। हम किसी चीज को दो परिस्थितियों में देख नहीं सकते हैं, एक हमारी आंखें होते हुए भी जब अंधेरा होता है तो हम किसी चीज को देख नहीं सकते हैं, बराबर है ना, और दूसरी अवस्था क्या है जबकि हम किसी चीज को नहीं देख सकते, अति रोशनी। आप सूरज के ऊपर, सूरज की ओर देखिए, आप देख सकेंगे कुछ, कोई कहे ये तो रोशनी है क्यों नहीं देख सकते, लेकिन अति रोशनी भी अंधकार के समान है, अति रोशनी से भी अंधापन आ जाता है। तो उसी प्रकार से जो लोग अज्ञान में हैं, जिनको अध्यात्म जीवन का कोई ज्ञान नहीं है, वो उस पहले श्रेणी के लोगों के समान हैं जो अंधकार में हैं, कोई ज्ञान नहीं, और जो मायावादी लोग हैं, निर्विशेषवादी लोग हैं, जो केवल निराकार के पीछे भाग रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं जो केवल सीधे रोशनी की ओर देख रहे हैं, और ये रोशनी इतनी तेज है कि इस रोशनी की वजह से उनको इस रोशनी के पीछे जो रोशनी का उद्गम है वो ही नहीं दिखाई पड़ते कि इस रोशनी के उद्गम एक व्यक्ति है जिनका नाम है श्री कृष्ण, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, कि भगवान श्री कृष्ण इस निराकार के उद्गम है, उनको समझ में नहीं आता है। तो इस प्रकार से श्रीमती कुंती देवी यहां पर स्पष्ट रूप से कहते हैं कृष्णाय वासुदेवाय, कि वासुदेवाय मतलब सर्वव्यापी है लेकिन फिर भी एक व्यक्ति है। और वासुदेव शब्द का और एक अर्थ यह है कि जो विशुद्ध सत्व स्तर में स्थित होते हैं। आप तो जानते हैं गीता के अनुसार यहां पर तीन गुण हैं, सत्व गुण, रजगुण और तमोगुण, और हरेक व्यक्ति यहां इन तीन गुणों से बंधा हुआ है, और जो व्यक्ति सत्व गुण में भी स्थित है फिर भी ये सत्व गुण शुद्ध नहीं है, क्योंकि ये सत्व गुण भी रजगुण और तमोगुण से मिश्रित है। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से सात्विक नहीं है यहां इस जगत में। तो जब व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके, उनका श्रवण कीर्तन करके विशुद्ध सत्व पूरे आध्यात्मिक स्तर पर स्थित हो जाता है, उसको वासुदेव स्तर कहते हैं। तो भगवान कृष्ण या वासुदेव वो व्यक्ति हैं जो कि विशुद्ध सत्व स्तर पर स्थित होकर जाने जा सकते हैं। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्यते, ऐसे श्रीमद् भागवत में कहा गया है। तो इस प्रकार से कुंती महारानी ने भगवान कृष्ण के दो नामों का वर्णन किया है, कृष्णाय वासुदेवाय और फिर देवकी नंदनाय च। वो कहते हैं कि ये देवकी के पुत्र हैं भगवान श्री कृष्ण। वास्तव में देखा जाए तो श्री कृष्ण सबके पिता हैं, लेकिन अपने ही भक्त को वो एक माता पिता के रूप में मानना चाहते हैं, उनको ये अच्छा लगता है। भगवान प्रसन्न होते हैं अपने भक्त का पुत्र बनके, इसलिए यहां पर उनको देवकी नंदन कहते हैं। नंदन मतलब नंदती, जो आनंद देने वाले हैं, देवकी को आनंद देने वाले, ये है देवकी नंदन। महाराज कुलशेखर मुकुंद माला स्तोत्र में कहते हैं, जयति जयति देवकी नंदन सौ, जयति जयति वृष्णिवंश प्रदीप, जयति जयति मेघश्यामल कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वीभार नाशो मुकुंद। वो कहते हैं जयति जयति, जय जयकार हो उस भगवान का जो कि देवकी नंदन के नाम से जाने जाते हैं। मतलब वास्तव में देवकी के पुत्र कौन, वो नहीं है, भगवान किसके पुत्र हो सकते हैं, लेकिन वो जाने जाते हैं देवकी के पुत्र के रूप में, क्योंकि ये भगवान को पसंद है, उनको आनंद आता है। जयति जयति वृष्णि वंश प्रदीप, वृष्णि वंश में के प्रदीप हैं ये श्री कृष्ण, यदुकुल के प्रदीप। जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगो, उनका शरीर बड़ा कोमल है। भगवान श्री कृष्ण इतने शक्तिशाली होने के बावजूद इनका शरीर बहुत कोमल है, एक 16 साल के युवक के समान। और मेघ श्यामल, बरसात के मौसम के काले बादल के समान उनकी कांति है। जयति जयति पृथ्वी भार नाशो मुकुंद, उनका नाम मुकुंद है जो मुक्ति प्रदान करते हैं और सारे पृथ्वी का भार बोझ का नाश करने वाले हैं श्री कृष्ण। ऐसे महाराज कुलशेखर श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। तो देवकी नंदन, क्योंकि श्री कृष्ण को आनंद आता है, इस प्रकार से अपने माता पिता का सेवा करना, उनको आनंद देना। ज्यादातर देखा जाता है कि लोग भगवान के सामने आते हैं भगवान को अपना पिता मानकर। भगवान को पिता क्यों मानना चाहते हैं लोग, आप बता सकते हैं? वो भगवान को पिता क्यों मानना चाहते हैं? कुछ मांग सकते हैं ना भगवान पिताजी से, अधिकार से मांग सकते हैं, पिताजी मेरे को मोटरसाइकिल चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को सिनेमा जाने के लिए पैसे चाहिए, पॉकेट मनी चाहिए, ये चाहिए, पिताजी से मांग सकते हैं। बेटा थोड़े, पिताजी जाके थोड़ी बेटा से मांगेंगे कुछ। तो हर एक व्यक्ति इस दुनिया में, लोगों की वृत्ति क्या रहती है, भगवान हमारे पिता हैं, वो हैं तो सही, लेकिन फिर भी वो इस दृष्टि से देखना चाहते हैं ताकि वो भगवान के सामने जाकर मांगते रहें मांगते रहें। और कोई बोले कि भाई ऐसे मांगना, मांगते मांगते रहना क्या बात, अच्छा बात है, वो क्या जवाब देंगे, आखिर हमारे पिता है ना। तो भगवान भी सोचते हैं क्या मेरे भक्त बार बार मेरे पास आके ये दो ये दो ये दो वो दो। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, अभी मैं बच्चा बन जाऊंगा, मैं मेरे भक्त का पुत्र बन जाऊंगा और उनसे मैं मांगूंगा, मेरे को दही दो, मेरे को मक्खन दो, मेरे को ये दो, मेरे को वो दो, फिर मैं मेरे भक्तों को आनंद दूंगा इस प्रकार से। तो प्रभुपाद बड़े सुंदर तात्पर्य लिखते हैं श्लोक में और वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग भगवान के पास ऐसी भावना लेकर आते हैं कि मुझे ये दो वो दो, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है भगवान के बारे में। वो अपने भोजन के लिए भी भगवान से मांगते हैं, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, ऐसे अलग अलग धर्मों में मांगते हैं कि हे भगवान आज की दाल रोटी हमें आप दे दीजिए। क्या कोई छोटे बच्चे को अपने माता पिता के पास जाकर पूछना पड़ता है, माता जी पिताजी मुझे आज आप दाल रोटी देंगे? पूछने की आवश्यकता नहीं है। अगर बच्चा पूरी तरह से माता पिता के ऊपर निर्भर रहा तो माता पिता अवश्य उसकी सारी मांगे पूर्ण करेंगे, श्रद्धा की बात है। लेकिन लोग ऐसा सोचते हैं कि वास्तव में हमारे लिए कोई आवश्यकता है, हमारे लिए दाल रोटी की समस्या है, रोटी कपड़ा मकान, ये आज का चुनाव में ये सबसे बड़ा मुद्दा है, रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान के लिए वो सोचते हैं कि हमें दिन भर परिश्रम करना चाहिए, और फिर ये अर्थ विकास के लिए इतने सारे पंचवर्षीय योजना, दस वर्षीय योजना लोग बनाते रहते हैं, इतने सारे योजनाएं बनाते हैं जिससे कि आर्थिक विकास हो लोगों का। लेकिन इतनी सारी योजनाएं बनाने के बाद, इतने पंचवर्षीय योजना इत्यादि सब कुछ करने के बाद अभी भी कोई भी संतुष्ट नहीं है, और न ही कभी संतुष्ट होंगे। क्यों? क्योंकि वो इस सरल बात को नहीं जानते। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक अमीर पिता के बेटे को कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। एक बहुत अमीर आदमी है, उसका बेटा है, उसको दाल रोटी की चिंता करनी है? सबसे अमीर आदमी तो भगवान है, और हम सब भगवान के बच्चे हैं, तो हमको रोटी कपड़ा मकान का सवाल कहां आता है? रोटी कपड़ा मकान का प्रश्न कब आता है? जब बच्चा पिता को छोड़ के चला जाता है, सड़क पे घूमता फिरता है, भटकता है। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि किसी अमीर पिता का लड़का पिता को छोड़कर सड़कों में भटकता रहे, घूमता रहे, गटर में पड़ जाए शराब पीकर, तो फिर क्या कर सकते हैं? अगर बच्चा लड़का बुद्धिमान है तो अपने पिता के साथ में रहेगा, पिता की सेवा करेगा, और सारे पिता के ऐश्वर्य का भोग कर पाएगा वो। लेकिन क्योंकि वो जानता नहीं, ऐसा करना नहीं चाहता, इसलिए कितना दुख भोगता है, और फिर उसके लिए रोज के लिए दाल रोटी की समस्या हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के बजाय उनको छोड़कर इस भौतिक ब्रह्मांड में आए हैं स्वतंत्र भावना से भोग करने के लिए, और जन्म मृत्यु के चक्र में अटक के पड़े हैं, 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हैं, और ऐसे जघन्य अवस्था में हम फेंके जाते हैं माया के कड़क नियमों के द्वारा, कीड़े की योनि, कहां हमारा स्थान भगवान के धाम में वैकुंठ में, और कहां कीड़ा, कहां चूहा, और कहां नरक में जाकर तरह तरह की यातनाओं को भुगतना। ये हमारा स्थान नहीं है, हमारे लिए बहुत कुत्सित अवस्था है वास्तव में। तो ऐसे अवस्था में जब मनुष्य शरीर प्राप्त होता है और फिर भी हम भगवान को भूल जाते हैं, भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं रखते हैं, तो फिर रोटी कपड़ा मकान का मुद्दा सामने आ जाता है। प्रभुपाद कहते हैं भगवान जो है इतने बड़े बड़े हाथियों को, लाखों लाखों हाथियों को इतना सब खिलाते हैं, हाथियों को रोटी कपड़ा मकान का सवाल नहीं आता? जब उनके लिए व्यवस्थापन करते हैं तो हमारे लिए क्यों नहीं करेंगे? तो प्रभुपाद कहते हैं ये सब अर्थ विकास की जो योजना है सब बकवास है। अगर केवल व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के ऊपर निर्भर रहे, श्री कृष्ण की सेवा करे, तो श्री कृष्ण सब कुछ अपने भक्तों को दे देंगे, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताया करते थे कि अगर इस जगत में किसी भी वस्तु का अभाव है तो वो है कृष्ण भक्ति का, और किसी का अभाव नहीं है। धन की कमी नहीं, अनाज की कमी नहीं, किसी भी चीज की कमी नहीं। बल्कि लोग आजकल देखते हैं ज्यादा अनाज का उत्पादन हुआ विदेशों में, समुद्र में हजारों हजारों टन जो है अनाज पानी में डाल देते हैं समुद्र में, क्योंकि अगर वो बेचेंगे मार्केट में, बाजार में, तो कीमत कम हो जाएगी, उनका मुनाफा कम हो जाएगा। प्रभुपाद कहते हैं ये मेरा धन है कह के उसको ऐसे संभाल रहे हैं, गरीब देशों में बांटते क्यों नहीं है ये? अगर बांटेंगे तो फिर सबको मिल जाएगा धन, कहीं भी समस्या नहीं होगी, पशु की हत्या करने की जरूरत नहीं होगी, आदमी खुश रह सकेगा। तो अगर भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के पुत्र के रूप में आए हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान को ही इसमें बहुत आनंद आता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अनन्यास चिंतयंतो माम ये जना परियुपासते तेषा मिथ्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन मनन करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, उनके पास जो भी कमी है मैं पूर्ण कर देता हूं, और उनके पास जो है उसकी सुरक्षा मैं करता हूं। तो वास्तव में भक्तों के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये है देवकी नंदन। और फिर नंद गोप कुमार आय, धीरे धीरे से कुंती महारानी कृष्ण का परिचय दे रही है, माता का नाम क्या, पिता का नाम क्या, पता क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, सब कुंती महारानी एक एक करके देती जा रही है, ताकि कोई संशय नहीं हो किसी को कि परम सत्य कौन है क्या है। पूरी तरह से स्पष्ट रूप से एक के बाद एक श्लोक में परिचय दे रही है भगवान का। तो हमें बहुत आभारी होना चाहिए कुंती महारानी का कि इतने स्पष्ट रूप से वो हमको पूरा पूरा ज्ञान दे रही हैं। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का परिचय देने के बाद अब आखिरी नाम लेंगी गोविंद। गोविंद मतलब जो इंद्रियों को और गवों को आनंद देते हैं। गो शब्द गाय भी है और इंद्रियां भी है। तो गोविंद श्री कृष्ण गायों का देखभाल करते हैं। गो ब्राह्मण हिताय च, गायों के ब्राह्मणों के हित करने वाले हैं। तो ये वैदिक सभ्यता है। और भगवान श्री कृष्ण ने बनाए हुए सभ्यता के अनुसार अगर हम चलेंगे तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। तो आगे कुंती महारानी ये तीसरा श्लोक बोलती है, कीजिएगा। इस आखिरी श्लोक की चर्चा करने के बाद फिर कथा यहां पर समाप्त करेंगे। कमल का दृश्य मिलेगा, कमल कमल ही कमल सब जगह, पंकज।
नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रये, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये,
अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश गर्त है, जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान गतिशील है और जिनके चरणों के तलवों में कमल अंकित है, ऐसे भगवान को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। तो इस श्लोक में कुंती महारानी श्री कृष्ण की तुलना एक कमल पुष्प से करती हैं। हालांकि भगवान श्री कृष्ण एक मनुष्य की तरह दिखते हैं, और कई लोगों का तर्क है कि मनुष्य ने जानबूझकर भगवान को अपने ही आकार में बनाया है, भगवान को एक रूप ऐसे दिया है, क्योंकि मनुष्य ऐसे दिखते हैं तो भगवान को भी वैसे ही आकार दिया है। परंतु ऐसा नहीं है, सत्य तो उल्टा है कि हम ऐसे हैं क्योंकि भगवान ऐसे हैं। भगवान के आकार में हमें भगवान ने बनाया है। तो भगवान श्री कृष्ण हालांकि मनुष्य की तरह दिखते हैं, परंतु ऐसे कई चिन्ह भगवान में होते हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि ये भगवान है, और उनमें से कई चिन्हों का वर्णन यहां कुंती महारानी कर रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण का सब कुछ कमल पुष्प के समान है। जैसे कृष्ण भगवान भगवद गीता में भी हमें रास्ता बताते हैं कि कैसे इस जगत में रहते हुए सदैव हम श्री कृष्ण का स्मरण कर सकें, तरह तरह के वस्तुओं को देखकर हम कृष्ण से उनका संबंध जोड़ लें, जैसे कि रसो हम अपसुकौंते या प्रभात में शशि सूर्ययोः, कि जल का स्वाद लेते समय हमें समझना चाहिए कि ये श्री कृष्ण है। चांद और सूरज की रोशनी देखकर हमें समझना चाहिए कि ये कृष्ण है। तो ठीक उसी प्रकार से इस श्लोक से हम जान सकते हैं कि जब भी हमें कमल पुष्प को देखें तो हमने श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। कमल पुष्प का महत्व वैदिक शास्त्रों में, वैदिक सभ्यता में, भक्ति मार्ग में भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि कमल पुष्प वास्तव में शुद्धता का प्रतीक है। कमल पुष्प सौंदर्य का प्रतीक है। न केवल कमल पुष्प खुद सुंदर रहता है, परंतु एक सुंदर रमणीय वातावरण में भी पाया जाता है। इसलिए जब हम किसी वस्तु की तुलना एक कमल से करते हैं, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति या वो चीज भी बहुत शुद्ध, बहुत सुंदर होगा अवश्य। कमल के कई नाम हैं संस्कृत में, एक दो बार शायद पहले भी इनके बारे में चर्चा हुई होगी मंदिर में। तो कमल के और कौन से नाम है संस्कृत में, आप बोलते जाइए। कमल तो एक है ही नहीं, कमल कमल के लिए नाम और कौन से हैं? पंकज, कमल, पंकज और पद्म, अंबुज। अंबु मतलब क्या, हर एक शब्द का अर्थ देखते हैं। अंबुज मतलब क्या है? पानी में जन्म लेने वाला। अंबु मतलब जल। पंकज मतलब क्या है? कीचड़। पंक मतलब कीचड़, मिट्टी। पंकज मतलब मिट्टी में जन्म लेने वाला, मतलब मिट्टी में कीचड़ में हो भी फिर भी वो कमल पुष्प शुद्ध रहता है, इसलिए पंकज। तो यहां पंकज शब्द का वर्णन किया है। जैसे भगवान कृष्ण बताते हैं गीता में, पद्म पत्र इवाम्भस, हमें संसार में कैसे रहना है, संसार के कीचड़ में रहते हुए भी उस कीचड़ से प्रभावित नहीं होना है, संसार के भीतर होते हुए भी संसार का नहीं हो जाना है, संसारी लोगों का संग करते हुए भी उनकी तरह नहीं होना है, भक्ति कभी छोड़नी नहीं है। तो यह है पंकज। और क्या? नलिना, बहुत अच्छा, नलिना। और पुष्कर, अरविंद, जलज और नई दिले नहीं। और सरोज, बहुत अच्छा, सरोज, राजीव, बहुत अच्छा। और क्या? अंबोज, अंबुज, अंबोज। तो वैसे कितने सारे नाम हैं। पुंडरीक, ये भी एक नाम है कमल के लिए। वैसे अलग अलग रंगों के कमल होते हैं, सफेद रंग के, नीले रंग के, पीले रंग के, लाल रंग के, तरह तरह के रंग के कमल होते हैं। ज्यादातर कमल जो होते हैं वो दिन में खिलते हैं, इसलिए कमल को अरविंद बंधु, सूर्य को अरविंद बंधु कहा गया है, कमल का मित्र, क्योंकि जब सूर्य आते हैं, सूर्य चमकता है, सूर्य उदय होता है, तो कमल खिलते हैं। लेकिन ऐसे भी कई कमल होते हैं जो रात को खिलते हैं। कमल के अलग अलग रंग होते हैं। नीलोत्पल, उत्पल एक प्रकार का कमल है जो कि नीले रंग का होता है। इंदीवर, ये भी एक कमल है जो नीले रंग का होता है। पुंडरीक, ये सफेद रंग का होता है। पुंडरीक का अपभ्रंश होकर पुंडलिक हो गया पंडरपुर में, पुंडरीक कमल। और कलहार, लाल रंग का कमल होता है। तो ऐसे रंग बिरंगी कमल होते हैं, बहुत सुंदर। तो कमल वैदिक शास्त्र में इसके कई बार बारंबार इसका उदाहरण आता है। गोलोक वृंदावन भी एक कमल पुष्प के समान है और गोलोक वृंदावन के अलग अलग भाग उनके पन्नों के बराबर हैं, फैल रहे हैं एक दिशा में। तो इस प्रकार से कमल का बहुत महत्व है और यहां पर कुंती महारानी हमको सिखला रही हैं इस श्लोक के माध्यम से कि कमल को देखकर, एक छोटे से पुष्प को देखकर हमारा जीवन हम कैसे सफल कर सकते हैं। जीवन सफल करना है, ज्यादा कोई सोना चांदी नहीं चाहिए, एक कमल पुष्प काफी है हमारे लिए। एक कमल पुष्प को देखकर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं कि इस एक श्लोक को अगर हमने कंठस्थ किया, इसके ऊपर बड़े गौर से चिंतन मनन किया, ये श्लोक क्या कह रहा है, किस प्रकार से श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है, श्री कृष्ण के बुद्धि का वर्णन कर रहा है, इस सृष्टि का वर्णन कर रहा है, अगर इस श्लोक के माध्यम से हम ये जान लेंगे और इस श्लोक का सतत स्मरण करते रहेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। एक श्लोक ज्यादा कठिन नहीं है, या एक पुष्प, ये हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग हो सकता है। तो सबसे पहली बात, नमः पंकज नाभाय। तो भगवान श्री कृष्ण की नाभि जो है वो कमल पुष्प के समान सुंदर है, इसलिए नमः पंकज नाभाय। पंकज पद्मनाभ भगवान को कहते हैं। दूसरा अर्थ है कि उनके नाभि से, गर्भोदकशाय विष्णु, उनके नाभि से कमल पुष्प आया और उस कमल पुष्प के डंडे में 14 भुवन है इस ब्रह्मांड के, सारे लोक हैं, नीचे पाताल लोक से लेकर पृथ्वी लोक से होकर ब्रह्म लोक तक, तो ये भी एक कमल पुष्प के भीतर है। तो सब जगह हम देखते हैं कमल ही कमल है। और एक नाम है, इसलिए भगवान को पंकज नाभि कहते हैं, क्योंकि उनके का नाभि से यह कमल पुष्प आता है। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण को यह अर्थ ये है, जब वो पंकज नाभाय कहती हैं, कुंती महारानी भगवान के नाभि से क्यों शुरू करते हैं। वैसे बताया जाता है कि जब हम भगवान श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह के सामने आते हैं तो भगवान के चरण कमलों से दर्शन उनका करना चाहिए। ऐसे करते करते ऊपर ऊपर आके फिर उनके सुंदर चितवन को, उनके मुखारविंद को देखना चाहिए। उसी प्रकार से जब श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं तो प्रथम स्कंद से शुरू करते 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 हम दशम स्कंद तक पहुंच सकते हैं। सीधे दशम स्कंद में नहीं जाना है, लेकिन यहां पर कुंती महारानी पहले चरण कमलों का वर्णन नहीं करती है, चरण कमलों का वर्णन आखिर में करती है। सबसे पहले उनकी वो क्या कहती है कि भगवान कृष्ण की नाभि जो है वो कमल के समान सुंदर है। क्यों ऐसा? वैष्णव आचार्य बताते हैं कि क्योंकि लौकिक संबंध में कुंती महारानी श्री कृष्ण के लिए बहुत आदरणीय है, माता तुल्य है, इसलिए अगर श्री कृष्ण कुंती महारानी सीधे ही श्री कृष्ण के चरण कमलों का वर्णन करती तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगता, उनको लगता है ये कैसे हो सकता है, ये मेरे चरण कमलों का वर्णन कर रहे हैं, ठीक नहीं। तो कुंती महारानी इस बात को जानती हैं, इसलिए चरण कमलों से वर्णन न करते हुए नाभि से वर्णन शुरू करती हैं और नाभि से वर्णन करते करते अभी ऊपर आ गई हैं वक्षस्थल पे, और वक्षस्थल पे क्या लटक रहा है, नमः पंकज मालिने। उनके गले में जो फूलों की माला है वो कमल पुष्पों से बनी हुई है और कभी कभी वो वैजयंती माला भी पहनते हैं, कभी कभी तुलसी का माला भी पहनते हैं। तो इस प्रकार से उनका नाम है पंकज मालिने। प्रभुपाद जी इसका और एक सुंदर अर्थ बताते हैं। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड में गर्भोदकशाय विष्णु के रूप में रहते हुए अपने नाभि से एक कमल पुष्प बाहर निकालते हैं। इसका हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण भगवान केवल एक कमल को उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये तो एक पुष्प है एक ब्रह्मांड में, लेकिन ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में एक एक पुष्प ऐसे निकलता है जिसके भीतर सारे भुवन स्थित रहते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये सारे ब्रह्मांड एक एक कमल पुष्प के समान है और सारे भौतिक सृष्टि जिसमें कि इतने सारे ब्रह्मांड हैं, वो एक कमल पुष्पों की माला के समान है। तो देखिए कितनी सुंदर बात, गौर से इसको समझिएगा कि सारी सृष्टि जिसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, ये भी भगवान श्री कृष्ण के लिए एक कमल पुष्प की माला के समान है। इसलिए जब हम पंकज मालिनी शब्द को सुनते हैं तो हम भगवान श्री कृष्ण के सृष्टि को भी हम ध्यान में रख सकते हैं और इस सृष्टि को देखते हुए हम समझ सकते हैं कि ये भी भगवान श्री कृष्ण के सुंदर बनाए हुए कमल के भीतर है। ये सारे ब्रह्मांड जो है ये भी एक कमल पुष्प है, भगवान श्री कृष्ण में लटकता हुआ एक माला का भाग है। फिर आगे कुंती महारानी कहती है, नमः पंकज नेत्राय। भगवान श्री कृष्ण की आंखें भी बड़े सुंदर हैं, कमल के समान। आंखों के लिए और कोई संस्कृत भाषा में शब्द कहिए, आंख आंख के लिए शब्द बोलिए। पुंडरी का पूरा नाम हो गया, केवल आंख के लिए अक्ष, अक्ष और लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, ऐसे कितने सारे नाम हैं। अब सारे कमल के जितने भी नाम है वो ले लीजिए और आंख के लिए जितने भी नाम है वो ले लीजिए और उनका कॉम्बिनेशन बनाइए, कितने सारे भगवान कृष्ण के नाम आपको आ गए, है कि नहीं। जैसे देखिए एक शब्द लीजिए कमल, कमल के साथ कौन सा है, अक्ष कमलाक्ष, नयन कमल नयन, नेत्र कमल नेत्र, कमल लोचन, फिर राजीव लोचन, राजीव नयन, ऐसे करके हाँ कितने सारे हजारों हजारों नाम आ सकते हैं। तो यहां कुंती महारानी कह रही हैं पंकज नेत्राय, कि उनकी आंखें पंकज के समान सुंदर, कमल के समान सुंदर हैं। इस प्रकार से कुंती महारानी कोई काल्पनिक बात नहीं कर रही, कोई भावुकता नहीं है, ये साधारण भावुकता नहीं है, ये भक्ति की चरम सीमा पर स्थित हैं कुंती महारानी और हमको सिखला रही हैं कि भगवान का गुणगान कैसे करना चाहिए और भगवान के सौंदर्य को हमें कैसे समझना चाहिए। पुंडरीकाक्ष ये भी भगवान का नाम है। ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थम गतोपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचिः। पुंडरीकाक्ष भगवान श्री कृष्ण जिनके कमल नयन है, हम इनका स्मरण करेंगे तो फिर हमारा जीवन सफल हो जाएगा। साथ साथ फिर कुंती महारानी कहती है, नमस्ते पंकजांग्रये। अंग्री अंग्री मतलब चरण, उनके चरण कैसे हैं, कमल के समान सुंदर हैं और उनके चरणों के तलवों में कमल से के निशान जो है वो अंकित है। भगवान श्री कृष्ण के कर कमलों के तलवों पर और चरणों के तलवों में भी कई चिन्ह हैं, उनमें से कमल पुष्प भी है। तो भगवान श्री कृष्ण से और कई चीज जो है उनका मुख कमल से तुलना की गया है, उनका कमल मुख, उनके कमल होंठ, उनकी कमल हंसी, ऐसे कई चीजें हैं कर कमल। तो भगवान श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं कि सब कुछ जो है कमल से तुलना की गई है। जब हम किसी चीज को दूसरे चीज से तुलना करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि दूसरी चीज ज्यादा सुंदर है इससे। अगर हम किसी व्यक्ति को कहेंगे कि भाई ये तो जैसे गंधर्वों की तरह गाता है, इसका मतलब है गंधर्व बहुत अच्छा गाते हैं, ये गंधर्वों के जितना उनसे बढ़कर नहीं गाता लेकिन गंधर्वों के समान है, लेकिन गंधर्व श्रेष्ठ है। तो जब हम कहते हैं कि श्री कृष्ण का सौंदर्य कमल के समान है, शायद कोई सोचे कि कमल ज्यादा सुंदर है श्री कृष्ण से, नहीं, कमल का सौंदर्य बढ़ जाता है श्री कृष्ण के गले में माला के रूप में आने से। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जितने भी आभूषण हैं उनका सौंदर्य बढ़ जाता है श्री कृष्ण के दिव्य शरीर के ऊपर रहकर। केवल एक हमारी भौतिक बुद्धि में ये बातें बैठनी चाहिए, क्योंकि हम केवल संसार को देखते हैं इसलिए तुलनाएं दिए गए हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ में वृंदावन में यमुना में खेल किया करते थे तो यमुना में और अन्य सरोवरों में कई कमल हुआ करते थे, तो उस समय कभी कभी समान हुआ करते सुंदर, तो पता नहीं चलता था कि कमल का पुष्प कौन सा है, बच्चों का मुखड़ा कौन सा है। और फिर दूसरे जो उनको ढूंढ निकालते थे, कहां है, कौन सा बच्चा कौन सा फूल कौन सा है। सारे ग्वाल बाल भी जो कृष्ण के साथ थे वो भी इतने सुंदर थे। और फिर जब एक दूसरे को ढूंढ लेता फिर कमल को उखाड़ कर डंडे से उसको मारता, ऐसे खेल करते हैं। तो कुंती महारानी शायद ऐसी सारी लीलाओं को स्मरण कर रही हैं और श्री कृष्ण की तुलना कमल से कर रही हैं। तो प्रभुपाद ने हमको एक अच्छा मार्ग दिखलाया है कि केवल इस एक श्लोक के माध्यम से, इस एक फूल के माध्यम से हम कैसे हमारे जीवन को परिपूर्ण बना सकते हैं, भक्ति में हम सबसे ऊंचे चरम सीमा तक पहुंच सकते हैं। और आने वाले श्लोकों के जहां तक हो सके, कल रविवार है, कल रविवार सुबह है, मंदिर में चर्चा होगी आगे आने वाले श्लोक, दोपहर में भी कुंती महारानी की स्तुति होगी और फिर सोमवार और मंगलवार। तो जहां तक हो सके जितने भी श्लोक हो उन श्लोकों के बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। किसी के कोई प्रश्न है क्या? भगवंता ने लीला पुष्प के लिए तो सुभद्रा मैया से वर्णन है कि नहीं? लहानपना मध्य नहीं। प्रश्न ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीला की वृंदावन में, तो उस समय सुभद्रा देवी के लीलाओं का वर्णन आता है क्या बाल लीला में? नहीं आता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला हुई कहां पर? वृंदावन में। सुभद्रा देवी थी कहां पर? मथुरा में। देवकी और वसुदेव की अंतिम संतान हुई सुभद्रा देवी, वो तो मथुरा में थी, तो इसलिए उनकी लीला यहां पर नहीं। फिर आगे चल के द्वारका लीला ना उनका उनका उल्लेख आता है श्रीमद् भागवत में। ठीक है, नरसिंह देव के मंदिर और मूर्ति की स्थापना कैसे हुई, यहां पुजारी को पूछेंगे आज, उनको ही बोलेंगे समझाने के लिए कि इस मंदिर का इतिहास क्या है और कब इसकी स्थापना हुई थी, इसका महत्व क्या है, उन्हीं से हम सुनेंगे। मुझे भी इतने विस्तार में नहीं मालूम है यहाँ का महात्म्य। एक पुस्तक में हमने पढ़ा है कि ब्रह्मचारी जीवन, ये तो ब्रह्मचारी आश्रम के लिए प्रश्न है, यहाँ पर नहीं करेंगे हम। बलराम जी का पहला प्रश्न, पहले विस्तार है वासुदेव, तो इसका महत्व क्या है? हाँ, बलराम जी से चतुर्व्यूह आते हैं, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, और इस संकर्षण से फिर से मूल और एक संकर्षण आते, फिर नारायण आते हैं, ऐसे कई चतुर्व्यूह हैं भगवान के धाम में। ये सब चतुर्भुज रूप हैं और ये वैकुंठ जगत में अलग अलग लोकों में अलग अलग स्थानों में निवास करते हैं और भौतिक सृष्टि के लिए भी अलग अलग चीजों के का अधिष्ठाता देव है वो। इसके बारे में विस्तार में नहीं जाएंगे, जिनको ज्यादा जानना है आप श्रीमद् भागवत पढ़ सकते हैं, जहां अनिरुद्ध किसका देखभाल करते हैं, प्रद्युम्न किसका देखभाल करते हैं, वासुदेव संकर्षण, इस सब का वर्णन बड़े विस्तार में आता है। जो बहुनाम जन्मनाम अंत्य श्लोक है उसमें वासुदेव शब्द का महत्व क्या है? वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान का नाम यह वासुदेव कहके क्यों कहते हैं श्री कृष्ण? ऐसे कोई खास महत्व नहीं, क्योंकि वासुदेव ही सब कुछ है, क्योंकि वासुदेव सर्वस्व है। वासुदेव मतलब सब जगह उपस्थित है, इसलिए सब जगह उपस्थित होने वाले वासुदेव ही सब कुछ है। इस दृष्टि से इनका नाम यहां पर वासुदेव कहा गया है। जीवन का परम ध्येय क्या है आप बताइए? कृष्ण प्रेम। अब श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ के गए तो उन्होंने वृंदावन के गोपियों की ओर वापस देखा नहीं, श्रीमती राधारानी की ओर नहीं देखा, बल्कि आगे चल के द्वारका में कई रानियों से विवाह किया, तो ऐसा क्यों? इसके लिए कोई कारण था? एक दृष्टि से देखा जाए तो श्री कृष्ण कभी वृंदावन छोड़ते नहीं हैं, इसीलिए उन्होंने कभी गोपियों को छोड़ा नहीं, श्रीमती राधा रानी को छोड़ा नहीं कभी भी। ये नित्य लीला है गोलोक वृंदावन की, और थोड़े समय के लिए प्रकट रूप में हमारे आंखों के सामने होती है। जब श्री कृष्ण वृंदावन आए, प्रकट रूप से उन्होंने इन लीलाओं को दर्शाया करीब करीब 10 साल के लिए, फिर वो मथुरा चले गए। तो वृंदावन की उनकी प्रकट लीला केवल 10 सालों की थी, परंतु उनकी जो अप्रकट लीला है, जो कि केवल वही लोग देख सकते हैं जिनका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है और जो कृष्ण प्रेम से भरा हुआ है, वो अप्रकट लीला नित्य रूप से चालू है वृंदावन में। जिनकी आंखें हैं वो समझ सकते हैं, क्योंकि ये लीला गोलोक वृंदावन की लीला है, भगवान के धाम की लीला है, कोई अंतर नहीं है इसमें। तो एक दृष्टि से श्रीमती राधा रानी और कृष्ण को कोई अलग नहीं कर सकते, ये नित्य जोड़ी है युगल किशोर, जैसे सीता राम, लक्ष्मी नारायण, शक्ति और शक्तिमान। जैसे कि सूरज को सूरज की किरणों से कभी अलग नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे क्यों किया? क्योंकि उनको मथुरा और द्वारका और अन्य जगहों में प्रकट लीला दर्शाना था, सबको, हम सबको दिखाना था। अगर वृंदावन छोड़ के नहीं जाते तो फिर वो मथुरा लीला कैसे करते, कंस का वध कैसे करते, द्वारका में रहकर 100 साल लीला कैसे करते, हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र आकर भगवत गीता का उपदेश कैसे करते? क्योंकि भगवान को अन्य प्रकट लीलाएं भी करनी थी, इसलिए वो सारे वृंदावन के निवासियों को छोड़कर चले गए। हरे कृष्णा, ये प्रश्न है, महिला आज सब जगह आगे हो, आगे हैं, पहले भी आगे थी, ऐसे कोई बात नहीं, फिर भी भक्त महिला भाषा तो आप थोड़ा अच्छी तरह से अक्षर में लिखेंगे तो समझ में आएगा, पढ़ना मुश्किल होता है। तो भक्त महिला को कैसे रहना है, क्योंकि वो सबके लिए आदर्श है। तो शायद प्रश्न ये है कि एक आदर्श महिला भक्त को कैसे होना चाहिए, कुंती महारानी की तरह है। हम सबके लिए आदर्श हैं जीवन में, आदर्श गृहस्थ श्री रामचंद्र की तरह। भगवान कृष्ण ने भी दिखाया आदर्श गृहस्थ आश्रम कैसे स्वीकार करना, कपिल देव की तरह आदर्श ब्रह्मचारी, चैतन्य महाप्रभु की तरह आदर्श सन्यासी। हर एक आश्रम के लिए, हर एक वर्ण के लिए हमारे आदर्श हैं, उसी तरह से महिलाओं के लिए भी आदर्श हैं। कितने सारे आदर्श हैं हमारे शास्त्रों में, तो उनके पद चिन्हों में हमें चलना है। 14 भुवन का कृपया संक्षिप्त में विस्तार कीजिए, और मरने के बाद भी आत्मा भटकता है तो कैसे? 14 भुवनों में ही भटकता है, पृथ्वी लोक है, पृथ्वी लोक बीच में, पृथ्वी लोक के ऊपर है भुवन लोक, ये भूलोक है, भू भुव स्वह, स्वह के बाद फिर महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, और इसके नीचे अतल, सुतल, तलातल, वितल, रसातल, पाताल, ये 14 भुवन है। और अपने अपने कर्मों के हिसाब से हमको इधर उधर भटकना पड़ता है, 84 लाख योनि में घूमना पड़ता है। तो हमारा उद्देश्य है कि 14 भुवनों से दूर होकर गोलोक वृंदावन चले जाएं। क्या भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को भी क्यों कष्ट देती है? ये ऐसे प्रश्न है कि हमें जो स्कूल में हमारे अध्यापक क्यों कष्ट देते हैं परीक्षा देकर, अगर हम सोचे हैं कि ये अध्यापक बड़े बुरे व्यक्ति होते हैं, हमको केवल कष्ट देना जानते हैं, हर साल में हमको 2-3 बार परीक्षा देते हैं, क्या सही विचार है? अच्छा है कि बुरा है? ये अच्छा है ना, कोई जवाब नहीं किसी का, अच्छा है। क्यों अच्छा है? प्रगति करने के लिए, क्योंकि अगर हमने परीक्षा में पास नहीं किया इसका मतलब हम अगले कक्षा के लिए हम योग्य नहीं है। हम दसवीं तक पहुंचकर पहले कक्षा की बात नहीं जानते हैं तो फिर कैसे होगा। इसलिए अध्यापक का काम होता है कि जो योग्य नहीं है उसको रोकना है। तो उसी प्रकार से माया देवी की सेवा है कृष्ण के प्रति कि केवल उन्हीं लोगों को आगे बढ़ने दें जो कृष्ण को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, विचलित तो नहीं करेंगे। केवल जो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण की सेवा करने के लिए सिंसियर हैं, वास्तव में चाहते हैं, उन्हीं को वो आगे बढ़ने के लिए देंगे। तो छानना कैसे उनको, कौन ऐसे है और कौन वैसे है, परीक्षा देकर। तो ये कष्ट नहीं है, ये हमारे आगे बढ़ने के लिए एक अवसर है, ऐसे हमको समझना चाहिए। सकारात्मक दृष्टि से, पॉजिटिव थिंकिंग से हम देखेंगे तो परीक्षा विद्यार्थी के लिए अच्छा है ताकि मैं पढ़ाई ज्यादा करूं और फिर प्रगति अच्छी तरह से अगली कक्षा में करूं और फिर मुझे अच्छा ज्ञान मिल जाएगा। नकारात्मक दृष्टि से देखने वाले विद्यार्थी सोचेगा अरे कहां बहुत कष्ट है, इतना मुश्किल है। उसी प्रकार से जो अच्छे भक्त होते हैं वो कभी भी कष्टों से, समस्याओं से वो डरते नहीं है। समस्याओं का समाधान को सहनशीलता से वो लेते हैं और भगवान की कृपा समझकर उसको सहन करते हैं। भक्ति है तो तपस्या का कुछ लाभ नहीं और भक्ति है तो तपस्या की जरूरत नहीं। लेकिन भक्तों को तपस्या भी जरूरी है, क्यों? ये उस तपस्या की बात है जो भक्ति से संबंधित नहीं है। लेकिन भक्ति से जो संबंधित तपस्या है वो तो हमें अवश्य करना ही करना है। कोई उदाहरण दे सकते हैं आप? सुबह जल्दी उठकर जप करना, एकादशी के व्रत का पालन करना, और आज पिछले 2-3 घंटों से जो आपने किया ये भी एक तपस्या है। एक जगह बैठे रहना, हालांकि नींद आए फिर भी आप अपने आप को जगा के रखे, पीठ दर्द करता है, पैर दर्द करता है, फिर भी एक जगह शांति से बैठे, हालांकि मन करता है कि इधर उधर घूमे, ये सब तपस्या है। क्योंकि भक्ति के लिए कर रहे हैं इसलिए ये अच्छा है। तो भक्ति में आगे बढ़ाने वाले जो तपस्या है उसको अवश्य करना चाहिए। लेकिन इस श्लोक में जो बताया हुआ है कि जो भक्ति से संबंधित तपस्या नहीं है उसको करने से कोई लाभ नहीं। जिस तरह पृथ्वी में कृष्ण लीला किए, क्या उस तरह अन्य लोकों में क्या कृष्ण लीला करते हैं, स्वर्ग, भूवर लोक आदि? आप जवाब दीजिए, अवश्य करते हैं। कोई उदाहरण? भगवान श्री कृष्ण स्वर्ग लोक जाके पारिजात वृक्ष का वृक्ष उठाकर लेकर आए, सुतल लोक में गए, सुतल लोक में जाकर बलि महाराज के द्वार में द्वारपाल बने हैं। जाकर उन्होंने अपने गुरु के पुत्र लेकर आए, तो कृष्ण लीला में भी उन्होंने सारे लोकों में जाकर लीला किए। इनके इसके अलावा अलग अलग अवतारों में भी उन्होंने अलग अलग लोकों में लीला किए हैं। जैसे वामन अवतार कहां पर हुआ था? स्वर्ग में। ऐसे कई भगवान के अवतार हैं। अगर आप श्रीमद् भागवत ध्यान से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि भगवान के अलग अलग अवतार ब्रह्मांड के अलग अलग लोकों में प्रकट होते हैं। लेकिन इस सारे ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक सबसे भाग्यवान है और पृथ्वी लोक में से वृंदावन की भूमि, व्रज भूमि सबसे पावन है। क्योंकि जो लीलाएं भगवान ने कृष्ण के रूप में किए और वो भी वृंदावन में, वो सबसे मधुर है, जो स्वर्ग में सत्य लोक में भी नहीं पाए जाते। प्रश्न ये है कि वामन देव जब बलि महाराज के यज्ञ में आते हैं तो नर्मदा तक चलते जाते हैं तो ऐसे लगता है कि पृथ्वी लोक पर हुआ नहीं, ये तो बाद में आए, लेकिन उनका जन्म स्वर्ग लोक में हुआ। जन्म होने के बाद स्वर्ग लोक से वो यहां पर आए, इसलिए उनका नाम है इंद्रानुज। वामन देव का नाम इंद्र के छोटे भाई, आदित्यों में से एक, अदिति के पुत्र, इंद्र के छोटे भाई, सूर्य देव के छोटे भाई। तो उनका जन्म वहां हुआ, अदिति और कश्यप उनके माता पिता थे। और फिर भिक्षा मांगने के लिए वो यहां पर पृथ्वी लोक पर आए। और जब उन्होंने सब कुछ हरण कर लिया बलि महाराज का, फिर बलि महाराज के ऊपर प्रसन्न होकर उन्होंने उनको सुतल लोक में निवास दिया। ठीक है, पत्नियों का स्थान क्या है गोलोक वृंदावन में? अवश्य उनका भी एक माधुर्य स्थान है, परंतु उतना नहीं जितना वृंदावन की गोपियों का है। वृंदावन के गोपियों का स्थान श्रेष्ठ है, इनसे भी ज्यादा। एक व्यक्ति को पुरुष का देह मिलता है, क्यों? जबकि वो भगवान का नकल करना चाहता है पुरुष होकर, पुरुष मतलब जो स्वामी। तो स्त्री के शरीर का कारण क्या है? अभी अपने अपने कर्म के अनुसार होता है। ऐसा नहीं है कि पुरुषत्व की भावना सब में होती है। पुरुषत्व की भावना मतलब भोग वृत्ति, संसार को उसका भोग करना, संसार का आनंद लेना, चाहे स्त्री हो पुरुष हो सब में है, केवल कृष्ण भक्त में नहीं है।
वो मन से रहता है वैसा, तो ये हमारा पृथ्वी लोक का सफेदी।
हमारी भौतिक बुद्धि से समझ नहीं सकते हैं। ये हम केवल इस छोटे से पृथ्वी लोक के आकार की बात नहीं कर रहे हैं, ये सारे भूमंडल की बात कर रहे हैं। भगवान ने जो सृष्टि बनाई है और जिस सृष्टि को हम देख रहे हैं, इसमें काफी अंतर है, क्योंकि हम उस भूमंडल को देख रहे हैं जो हमारी इंद्रियों के रेंज के भीतर है, परंतु ये भूलोक जो है, ये पृथ्वी लोक जो है, वो तो केवल भूमंडल का एक छोटा सा हिस्सा है। भूमंडल तो और बहुत बड़ा है, सूक्ष्म तत्व है भौतिक स्तर पे भी। तो इसलिए शास्त्रों में ऐसे कई बातें पढ़ने में आती हैं, सुनने में आती हैं, शायद जो हमारी इंद्रियों से, वो इंद्रियों के विश्लेषण में बैठे नहीं, इसलिए हमें जैसे है वैसे स्वीकार करना है, नहीं तो हम शास्त्रों की बातों को समझ नहीं पाएंगे। पहले जो जीव कर्म करता है, तो प्रलय के बाद उसके कर्म कहां पर कौन देखता है कि प्रलय के पहले क्या कर्म था, उसको अगला शरीर कौन सा मिलना है, यही प्रश्न है। नष्ट होता है क्या उसके कर्म? नहीं, उसके कर्म नष्ट नहीं होते। सृष्टि के संहार होने के बाद भी उसके कर्म नष्ट नहीं होते, सब भगवान के सुपर कंप्यूटर में स्टोर रहते हैं। तो हम नहीं सोचना चाहिए प्रलय होने वाला है, चलो भरपूर भोग कर लो, फिर अपने को इसका कर्म का फल नहीं मिलना है, ऐसे नहीं। सब कुछ बराबर रहेगा, अकाउंट ब्रह्मा जी बिल्कुल बराबर अकाउंट रखते हैं, और वही सही अपने को शरीर मिलना है प्रलय के बाद। प्रलय में और मृत्यु में ज्यादा कोई अंतर नहीं है, केवल समय का अंतर है, नींद में, मृत्यु में और प्रलय में, और तरह तरह के प्रलयों में ज्यादा अंतर नहीं, केवल समय का अंतर। नींद जो है 6-8 घंटे की, मृत्यु थोड़े महीनों की, और प्रलय थोड़े सालों की, बस इतना ही अंतर। कुंती महारानी की प्रार्थना है, ऐसे लगता है कि शांत रस में है, लेकिन वो वात्सल्य रस में है, तो कृपया विश्लेषण इसका उत्तर दीजिए। अवश्य कुंती महारानी वात्सल्य रस में है, परंतु फिर भी वृंदावन के भाव में नहीं है वो, इसलिए वो इस प्रकार से श्री कृष्ण को भगवान कह के संबोधित कर रही हैं। वृंदावन के निवासी जैसे माता यशोदा बिल्कुल नहीं जानती हैं कि कृष्ण भगवान हैं, क्योंकि कुंती महारानी का भाव जो है वो द्वारका का भाव है, हस्तिनापुर का भाव है, मथुरा का भाव है, वृंदावन का नहीं है। और यहां पर वो तत्व प्रदर्शित कर रही हैं, और आगे चल के हम देखेंगे कि कैसे कृष्ण के प्रति, हालांकि वो ज्ञान उनको है, फिर भी वो वात्सल्य प्रेम रहता ही है। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ, पहला प्रश्न है कि भगवान पंकज माला पसंद करते हैं या तुलसी की माला पसंद करते हैं? दोनों ही। हाँ, तुलसी तो तुलसी है, अपने जगह में तुलसी की कोई तुलना नहीं है, तुलसी तो सबसे प्रिय है भगवान के लिए, लेकिन जगह जगह वो तुलसी के माला भी पहनते हैं। यहाँ चित्र होगा तो देखते हैं, चित्र है। तो भगवान को तुलसी माला अवश्य ज्यादा प्रिय है, परंतु कमल माला भी बहुत पसंद करते हैं। दूसरी बात यह है, कि कई ऐसे वक्ता होते हैं, प्रवक्ता होते हैं जो कि तुलसी माला पहनते हैं, तो क्या ये सही है? अगर वो भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद हो तब ठीक है, लेकिन बिना श्री कृष्ण को अर्पण किए हुए तुलसी का माला पहनना ये तो अच्छी बात नहीं है। जो भी माला हम पहनते हैं वो भगवान कृष्ण का प्रसाद ही होना है। यहाँ भी सुंदर चित्र है जिसमें तुलसी माला पहने हुए भगवान ने, साथ साथ फूलों की माला भी है। मनुष्य कर्म के अनुसार अनेक शरीर धारण करता है, तो हर शरीर के बाद क्या वो नरक जाता है? क्या बार बार नरक के जाना आना होता है? अपने अपने कर्मों के अनुसार अगर कर्म ऐसे रहे कि नरक जाना पड़े तो नरक जाना पड़ेगा, अगर कर्म ऐसे हुए कि स्वर्ग जाना पड़ेगा तो स्वर्ग जाएंगे, और अगर ऐसे हमारे कार्य हुए कि हमें गोलोक वृंदावन जाना पड़े तो हम गोलोक वृंदावन जाएंगे। जैसे हम कार्य करेंगे उस वैसे ही गति प्राप्त होगी। ठीक है, तो आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। हाँ जी, कृष्ण सबके आदि हैं और सबके जन्म के कारण है, तो उनका जन्म कहाँ से हुआ? आप उत्तर दीजिए, अनादिकाल से। उनका कोई जन्म नहीं, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, आदि वो सबके आदि हैं लेकिन फिर भी अनादि हैं, उनका कोई आदि नहीं है।